शांति। आदरणीय निर्मला दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब साइलेंस की ताली बजाए जरा, साइलेंस की ताली। मुस्कुरा करके मस्तक ज्योति की किरणों के साथ आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी को बाबा साकार मुरलियों में भी याद करते हैं, जिसमें बाबा ने आपको निर्मल आश्रम के रूप से याद किया है। बाबा का आप ऐसा नूरे रतन है जो बाबा के दिल पर विराजमान है। कुछ ऐसे हीरे होते हैं जो दिल की डब्बी में समा लिए जाते हैं, तो आप बाबा का ऐसा निर्मल, शुद्ध, पवित्र, इनोसेंट, पावरफुल डायमंड है जो उनको बाबा ने अपने दिल में छिपा करके रखा हुआ है। आदरणीय दीदी जी पूरे विश्व भर में बाबा को कंधों पर बिठा करके घुमा करके आए हैं और अब बाबा की दिव्य कर्म भूमि हेडक्वार्टर में आप उपस्थित हैं। आदरणीय दीदी जी 1962 में बाबा का बने और तब आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम पर आपने डॉक्टरी पास की। जब बच्चियों को डॉक्टर बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लोग पढ़ाया भी नहीं करते थे। आपकी मेडिकल की पढ़ाई ने भी इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत बड़ी करामात का काम किया है। उसके पश्चात आप जैसे ही ईश्वरीय सेवाओं में आए 72 से, तो सबसे पहले आपकी सेवाओं का पार्ट मुंबई में रहा। बोरीवली सेवा केंद्र पर दादियों के अंग संग भी आप रहे। दादी जानकी, प्रकाशमणि दादी, दीदी, सबके अंग संग रहते, उनकी पालना लेते। आपका 72 के बाद विदेश सेवा का पार्ट चला और विदेश सेवा में भी विशेष ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स में आपकी विशेष सेवाएं बाबा को विश्व पिता के रूप में प्रत्यक्ष करने में बहुत सार्थक सिद्ध हुई। और वर्तमान समय सन 2009 से आप अज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के डायरेक्टर भी हैं, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज की सेवा भी संभाल रहे हैं और एशिया पैसिफिक सेंटर्स के जो 17 कंट्रीज में सेंटर्स हैं उनके भी आप डायरेक्टर हैं। आप विशेष बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सबसे बड़ी बात, बाबा ने आपको दिल में छिपाया तो आपके भी रोम रोम में बाबा समाया। आप बहुत सिंपल, सरल वाणी से बड़े बड़े गुह्य विषयों को ऐसे स्पष्ट कर देते हैं जो सरलता से सबके हृदय में उतर जाए। आज दीदी जी ने जो हम सबके लिए विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। वो है कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय। क्योंकि योग के लिए एक शिकायत सबको रहती है कि कर्म करते हुए मन कर्म में चला जाता है। कितना भी कोशिश करें याद बनी रहे तो वो एकाग्रता बन नहीं पाती है। तो आज दीदी जी इस गुह्य विषय को सरलता से हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। कल से आप भट्टी में आए हैं, अच्छा रहता है ना योग? फिर चलते पीते खाते पीते अभ्यास करते हैं कि दूसरी दूसरी बातों में चले जाते हैं? नहीं, मन नहीं जाता है दूसरी बातों में? घरों में माताएं, घर याद आता है या नहीं? बच्चे याद आते हैं? फोन किसने चालू रखा है? हाँ, कितनों का फोन चालू है जरा हाथ उठाना। बस एक का, दो का, तीन का तीन चार का फोन चालू है, माना अभी भी कहाँ ना कहाँ संपर्क रहता है। तो यहाँ आए हो, आपको कल ही शिलू बहन ने बताया होगा ना कि फोन बंद कर रखना। एक बारी फोन चालू करके घर में समाचार दे दो, हम खुश खराफत से पहुंच गए हैं। पीछे फोन बंद चार दिन। तो जितना यहाँ अभ्यास करेंगे ना तो काम में आएगा, इसलिए यहाँ अभ्यास करो, चलते फिरते बाबा की याद रहे, बाबा 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 करते रहो। भक्ति में भी माला सारा दिन जपते रहते थे ना, खास वैष्णव लोग वो हथेली में वो थैली लेके फिर सारा दिन चलते चलते फिरते हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो इसी से मन में बाबा की याद रहे, और मन में याद ना रह सके तो बाबा बाबा करते रहो। भक्ति की आदत तो सहज है ना, मंत्र जपने की, तो अभी शिव बाबा का मंत्र जपते रहो। तो यहाँ अभ्यास करो आत्मिक स्थिति में, जब भी किसी को देखो ये आत्मा है। तो इससे क्या होगा, आत्मा 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 समझने से फिर शिव बाबा की याद सहज हो जाएंगी। लौकिक का भान आते फिर क्या होगा, लौकिक की याद आ जाएंगी। तो देह भान में नहीं रहना है, पहले तो देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करना है। और यहाँ भी जब योग में बैठे ना तो मन को ऑर्डर दो, कभी साकारी से आकारी, देखो कितना टाइम में सूक्ष्म वतन में पहुंचता है, और फिर ऑर्डर दो कितना टाइम में परम धाम पहुंच जाता है। तो ये भी अभ्यास यहाँ करो, साकारी से आकारी से निराकारी। और चलते फिरते बैठते हैं तो कोशिश करके बीज रूप स्थिति में रहो, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र फिराना याद आता है? हाँ, कैसे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, एक जन बताओ, उठकर बताओ कैसे चक्र फिराएंगे बुद्धि में। हाँ, दूसरा माइक्रोफोन है तो इसको दो तो सब सुने ना।
पहले तो बाबा की याद में एक सेकंड में आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप में परम धाम में थे तो पवित्र स्वरूप में थे कि एकदम बाबा के नजदीक में देखना है, फिर हम नीचे आएंगे तो स्वर्ग में बाबा, स्वर्ग में देखना है कि हम सोलह कला संपूर्ण निर्विकार थे, देवता स्वरूप का अनुभव करना है कि हम परम पवित्रता का ताज पहना है और हीरे जड़ रत्न जड़ी ताज भी पहना है, और उसके बाद त्रेता
पहले सत्युग में।
हाँ,
कौन सा वंश था? सूर्यवंशी। कितने जन्म लिए?
आठ।
आठ। कौन राजा रानी थे?
लक्ष्मी नारायण।
लक्ष्मी नारायण। और वहाँ की हमारी क्या गुण थे?
16 कला संपन्न
संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम। तो सारा बुद्धि में एक एक बात आवे सत्यों की, ये वहाँ सब हेल्थी वेल्थी हैप्पी, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ये बुद्धि में आना चाहिए कि वहाँ सत्यु कैसा था। पीछे आओ त्रेता में, त्रेता में क्या करेंगे?
राम सीता का राज्य 2 कला कम हुए, मतलब 14 कला रहे, तो फिर उसके बाद द्वापर में आएंगे।
तो जल्दी जल्दी भागती हो, पंजाब में जा रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं भागो। तो त्रेता में और क्या था?
चंद्रवंशी,
वहाँ भी सब कुछ था, सर्व सुखी थे, कोई झगड़ा नहीं, दूसरा कोई धर्म नहीं, बस एक ही, एक भाषा, एक राजा और
एक मत,
एक धर्म, सब प्रेम प्यार से चलते थे। फिर द्वापर में आई, फिर द्वापर में क्या हुआ?
पूज्य थे, पूज्य थे।
द्वापर में कौन थे?
पूज्य रूप में सब, मतलब पूजा होती थी
द्वापर में। वैश्य कितने जन्म?
42 जन्म।
कितने जन्म द्वापर में? 21 जन्म। और क्या क्या शुरू हो द्वापर से? दुख, अशांति, अनेक धर्म। कौन से धर्म द्वापर में आए?
बौद्धी, क्रिश्चियन,
इस्लाम,
बौद्धी, क्रिश्चियन।
फिर लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे शुरू हुआ, देह अभिमान आया और विकारों की शुरुआत हुई, इसलिए दुख अशांति शुरू हुआ। फिर आए कलयुग में, कलयुग में क्या हुआ?
कला कम होते होते
क्या हुआ?
दुख अशांति,
जीरो कला
में,
और
दुख अशांति बढ़ती गई।
कौन सा धर्म, कौन से धर्म कलयुग में आए? कौन से? संन्यास, सिख धर्म, अनेक मठ पंथ सब शुरू हुए। नाम गिनती करो तो जैसे साईं बाबा का शुरू हुआ और रजनीश ने शुरू किया, और हमारे भारत में ही देखो कितने मेहर बाबा और कितने बाबा ये शुरू हो गए, राम रहीम और आशाराम और हरे कृष्णा, और कितने शुरू हो गए, और शूद्र वंशो जन्म कितने? 42। पीछे क्या हुआ?
बाबा का अवतरण।
संगम में क्या हुआ?
संगम में बाबा का अवतरण हुआ।
धर्म ग्लानी हो गई, तो एक धर्म की स्थापना करने शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, हमें ज्ञान दिया, ब्राह्मण बनाया। तो संगम युग छोटा कितने साल का? 100 साल का। और ब्राह्मणों के कितने जन्म? एक जन्म। हो सकता है कोई दो जन्म भी ले वे, हो सकता है ना कि कोई जल्दी मर गए होंगे अभी भी होंगे, तो बाबा अभी फिर वापस हमें ब्राह्मण बना के पावन बना के वापस ले जाता है। तो ये बुद्धि में चक्कर फिराना है। ठीक है, दे दो बाइक। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और हमारे पांच स्वरूप को भी याद करना है। तो जितना जितना यहाँ आप अभ्यास करेंगे ना, तो घर में कर्म करते करते, क्योंकि सबको कर्म करना है, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, यहाँ बैठ जाने के लिए नहीं छुट्टी देते बाबा। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी अपने बाल बच्चों की संभाल करूंगा, मधुबन में तो पांच दिन भी आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, हमेश के लिए कहाँ से छुट्टी मिलेंगी, और वो भी 15-15, 20-20 हजार को मिलती है छुट्टी, और हमारे तो 9-10 लाख ब्राह्मण हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपनी सेवा वहां करो, घर संभालो और पवित्र जीवन बिताओ, पढ़ाई करो। तो इसलिए कर्मयोग तो करना ही है, माताओं को खाना पीना पकाना है। तो उस समय घर का काम करते करते ध्यान रखना है कि हमें बाबा की याद में रहना है। तो इससे क्या होगा कि अभ्यास जितना जितना करेंगे ना, तो वो अभ्यास हमको समय में काम लगेगा, क्योंकि अभी समय है कर्म की भोगना भोगने का। जो हमने अभी तक पाप कर्म किए हैं, क्योंकि सत्य त्रेता में तो पाप नहीं किए, 21 जन्म तो ठीक चले गए और 20 जन्म कहूं, पर अभी 63 जन्म जो पाप किए हैं, और हो सकता है ब्राह्मण बनने के बाद भी कुछ पाप किया हो सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो पाप किए हैं ना, आप जो यहाँ गली में बैठे हैं ना, यहाँ बहुत जगह है, आगे आ जाओ माताएं, क्योंकि हमने 63-64 जन्म बहुत पाप किए। यहाँ भी जगह है, भाइयों की तो इतनी ही जगह ली है, बहनें बैठ सकती है, एक लाइन बना सकती है। तो सब जन्मों का हिसाब किताब अभी चुक तो यहाँ करना है, ब्राह्मणों का हिसाब किताब यहाँ ही चुक तो होगा, धर्मराजपुरी में कम होगा, क्योंकि ये समय है हिसाब किताब चुक्त करना। तो कर्म भोग भोगना है, कैसे भोगेंगे, सबसे पहला है शारीरिक बीमारियां, क्योंकि कई बार हमको पूछते हैं कि मम्मा ने इतना योग किया फिर भी उसको कैंसर की बीमारी, उस दादी को देखो, जानकी दादी को देखो, इतने 82 साल के योग साधना करते हुए भी कुछ न कुछ बीमारियां रहती हैं, सभी दादियों को देखो, प्रकाशमणि दादी को देखो, कितना समय पथारी में रहना पड़ा। सब दादियों को देखो तो अंत में उनको हॉस्पिटल में या पथारी में रहना पड़ता था, वेंटिलेटर पर रहना पड़ता था आदि। तो ये क्या है, पिछले हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा हिसाब किताब शरीर के साथ, डॉक्टरों के साथ, लौकिक संबंधियों के साथ, क्योंकि उनको भी तो दौड़ भाग करनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है, पेशेंट की संभाल करनी पड़ती है। प्यार से भल करते हैं, परंतु समय शक्ति धन देना पड़ता है ना, तो ये भी हिसाब किताब है सबके साथ। तो उस समय यदि योग में रहने की आदत है, अशरीरी होने की आदत है, तो दुख की भोगना नहीं होती। शरीर बीमार है, शरीर अपना बीमारी में जो सहन करना है करता है, परंतु मन में दुख नहीं, क्यों, उपराम हो जाते हैं शरीर से। क्योंकि आजकल तो ऐसी बीमारियां हो गई है सबको, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि आदि बीमारियां होती रहती हैं। तो ये भी कर्मों का हिसाब किताब है, परंतु योग में रहेंगे आप देखेंगे दादियों को बीमारी में भी शांत। गुलजार दादी भी हमेशा जैसे उपराम निंद्रा अवस्था में, आंख बंद ही। तो ये है कर्म का भोग। दूसरा कर्मों का भोग होता है हमारे संबंधों में। चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, अज्ञान के में तो संबंधियों का आप देखते हैं, सासू बहू ननन भाभी देरानी जेठानी कितनी खिटपिट होती रहती है। ज्ञान में आप हो और वो ना हो तो भी खिटपिट, पति के साथ भी खिटपिट, पति ज्ञान में ना है तो कितनी खिटपिट होती है। कहेगा शादी में चलो, क्यों खाती नहीं हो, ये करो वो करो, फिल्म में चलो, बच्चों के लेकर चलो रेस्टोरेंट में, तो खिटपिट होती है। हाँ कहो तो समय व्यर्थ जाता है, चलो खाओ नहीं पियो नहीं, पर समय तो व्यर्थ जाएगा। ना कहो तो झगड़ा, तो पति के साथ, बच्चों के साथ, आज तो बच्चों के साथ भी बहुत मदाकुट करनी पड़ती है, पढ़ते नहीं है, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, सारा दिन फोन पर, SMS और सोशल मीडिया और फोन करते रहते हैं। विदेश में तो बच्चों को फोन देना पड़ता है क्योंकि सेफ्टी नहीं है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो बच्चों को कहेंगे कि आप घर में फोन कर देना, या पुलिस को बुला देना, तो उनको डायरेक्शन दे के रखते हैं। परंतु कई माँ बाप तो इतने तंग हो जाते हैं, कहते इतना बच्चों के फोन का बिल आता है और बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं करते हा? विदेश में तो क्या है, कई बार बच्चे और माँ अलग हो जाते हैं। यूजुअली माँ ज्ञान में है, बाप ज्ञान में नहीं है, और बच्चे बाप के पास जाते हैं क्योंकि चॉइस होता है, बच्चों को चॉइस देते हैं। वहाँ डाइवोर्स होता है तो बच्चों को चॉइस देते हैं कि तुमको माँ के पास रहना है बाप के पास, तो बाप के पास खा पी मौज कर सकते हैं, माँ तो सन्यासी वेजिटेरियन ही खिलाएंगे, घुमाएंगी नहीं, रेस्टोरां में नहीं ले जाएंगी, पैसे नहीं देंगी, तो इसलिए कई बच्चे बाप के साथ पसंद करते हैं। लड़के तो जरूर बाप के पास पसंद करते हैं क्योंकि बाप तो हॉर्स राइडिंग के लिए स्विमिंग के लिए ले जाएगा। तो क्या होता है, फिर बच्चे माँ कहती है मैं बच्चों को मिलने जाती हूँ पर बच्चों को टाइम ही नहीं मेरे साथ बात भी करने का, वो अपने या तो पढ़ाई में बिजी है या तो फ्रेंड्स में बिजी है। माँ कहती जाकर करूं भी क्या, तो ऐसे हो जाता है कई बार कि माँ बाप से कनेक्शन, आजकल व्यक्तियों से कनेक्शन टूट गया, सिर्फ मशीनों से कनेक्शन। तो इसलिए खचित-पित तो होती रहती है, और पंजाब में तो ड्रग्स का भी बहुत हो गया है। हाँ, ये अकोला का ग्रुप है। अच्छा, तो क्या है कि कई ठिकाने यंग ग्रुप है, ड्रग्स में चला जाता है, तो माँ बाप को समय दे के ध्यान देना पड़ता है कि ड्रग में नहीं चले जाए। तो ये है संबंधों की गड़बड़ी। तीसरी गड़बड़ी है धन दौलत की। महाराष्ट्र में तो विशेष अकाल है ना, अनावर्षा, बारिश नहीं, खेती नहीं, अनाज के दाम बढ़ गए, और खेडू आपघात करते हैं तो कितनी तकलीफ हो जाती है ना। धन दौलत की कर्जा बढ़ता जाता है, तो वो कर्जदार है तो वो रोज न रोज दरवाजा खटखटाता है, पैसा दो हमारा वापस, कम से कम ब्याज दो, और ब्याज इतना होता है तो ब्याज देने में बेचारा खत्म हो जाता है। और कई स्थान पर क्या करते हैं, समझते हैं चलो विदेश जाएं ज्यादा कमाई होंगे, तो विदेश जाने के लिए क्या करते हैं, एजेंट को पैसा देते हैं लाखों का, कुछ न कुछ उधार लेकर भी विदेश जाते हैं, और वो एजेंट भी इतने चालाक होते हैं पैसा ले लेते हैं और इलीगली भेजते हैं, तो वो बेचारा वहां जाकर फंस जाता है। एक इंडियन गया था मलेशिया में, उसको एजेंट ने कहा चलो तुमको तुम इंजीनियर है, तुमको इंजीनियरिंग का जॉब दिलाऊंगा। तो वो बेचारा गया मलेशिया में, तो उसको नौकरी मिली ये चौकीदार की। वो भी थोड़े दिन में छूट गई। अभी क्या करें, इतना खर्च करके आया है, नौकरी भी छूट गई, और फिर एजेंट तो कुछ जिम्मेवार नहीं रहता। एक बार चला दिया फिर कहेगा अभी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और कई बार तो उनका पासपोर्ट भी ले लेते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो वहां क्या करते हैं, विशेष मिडिल ईस्ट में उसका जो उसके पास काम करने गई है ना, उसका पासपोर्ट उसके मालिक के पास रहता है, और एक साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि वो लोग भी पैसा देते हैं एजेंट को और उसको नौकर के रखते हैं, खाना नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं। एक नौकरानी को, तो इंडियन नौकरानी थी, दिन में 15-15, 20-20 घंटा काम कराए और खाना नहीं दे, कुत्ते के लिए खाना देंगे वो नौकरी के नौकरानी के लिए नहीं देंगे। तो उसको तो इतनी भूख लगी थी कि जो कुत्ते के लिए मांस दिया था वो माता ने खाया नौकरानी ने, क्योंकि खाना नहीं था। और फिर उसको गरम गरम प्रेस है स्त्री, उसका पीठ पर लगाया। तो ऐसे ऐसे उनको हैरान करते हैं। तो इसलिए क्या है, धन की भी आजकल बहुत, मैं लास्ट वीक में श्रीलंका से आई, वहां तो जिसको देखो उसको यही तकलीफ, यही कंप्लेन करेंगे कि हमने 4-5 लाख उधार लेके एजेंट को दिया और हमारा बेटा अभी इलीगली बैठा है दूसरे देश में। एक माता ने क्या बेचारी बहुत भोली थी, बैंक से 60 लाख लिया उधार और बैंक में ही उसने लॉन्ग टर्म पर डिपॉजिट किया, तो समझती थी ब्याज मिलेगा उससे चल जाएगा। तो उसके भाई को मालूम पड़ा कि इसके पास 6-7 लाख है। उसने कहा मेरे मुझे 50 लाख दो, मैं धंधे में लगाऊंगा, तुमको दूंगा। और वो माता इतनी भोली, वो 50 लाख दे दिया जिसने उसने लिया था बैंक से उधार, वो ही उनको दे दिया। अभी बैंक उसके पीछे पड़ेंगे ना कि भाई पैसा वापस दो। तो ये होता है पैसे के कारण, जिसके पास पैसा है मित्र संबंधी पीछे पड़ेंगे। यहाँ का तो मालूम नहीं, पर श्रीलंका में किसी के पास पैसा है, माँ के पास पैसा है, बच्चा कहेगा लाओ, और फिर बच्चा भी कैसे यूज करता है, कई धंधे में नुकसान जाता है, कई ड्रग्स में खत्म कर देते हैं। तो जिसको देखो उसके पास यही कंप्लेन कि हमारे से ठगी हुई। और व्यापार धंधा में तो ठगी होती ही है। कोई व्यापारी है वो उनको माल बेचना है तो क्या करेंगे, कहेंगे माल ले लो पीछे पैसे देना, और पैसा देने वाले पीछे देते नहीं। तो वो बेचारा कब्जे में आ जाता है। तो इसलिए ये यहाँ भी तो ऐसे ही है, कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकते, बच्चों का भी विश्वास नहीं होता है, भाई का भी, भाई ने खून किया, पंजाब में एक भाई ने भाई का खून किया कि जमीन प्रॉपर्टी सब हमको मिल जाए हमारी। अमेरिका में दो बच्चों ने माँ और बाप दोनों को मार दिया गोली से, ऐसे सामने गोली से मार दिया, और 18-21 साल के लड़के थे, नेचुरली पकड़े गए, जेल में गए, न माँ बाप रहे न प्रॉपर्टी मिली, जेल की हवा खाते रहे। परंतु कई बार ऐसे हो जाता है, तो ये भी कर्मों का हिसाब किताब ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ संभालना भी है, परंतु हम लोग है आध्यात्मिक है तो हमारी जीवन सिंपल है। बाबा कहते हैं दाल रोटी मिल गया और क्या चाहिए। तो इसलिए ये मटेरियल साधनों की इच्छा नहीं है, और हमारे पास जो अविनाशी ज्ञान योग गुणों की संपत्ति है उससे हम संतुष्ट रहते हैं। परंतु फिर भी कुछ तो खाने पीने के लिए रहने के लिए हमें धन चाहिए, तो इसलिए ये भी हिसाब किताब है। फिर आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सबसे ज्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, कि कई बार अपना दोष नहीं है, दूसरा टक्कर मार देता। आजकल तो ऐसे सुनते हैं कि कई बसेस गिर जाती है पहाड़ी पर चलते चलते खाई में गिर जाती है, बसेस का एक्सीडेंट, स्कूल के बसेस का एक्सीडेंट हुआ था अभी अभी बीच में, 35 बच्चे मर गए, और समझो कई लोग हैं पास जाते हैं। कल ही समाचार आया था, एक मुंबई में बहन थी, रिपोर्टर थी, वो 1:30 बजे स्पीड में जाती थी रात में, तो पुल से टकराई और वहीं नाले में उसकी गाड़ी गिर गई, मर गई। तो ऐसे रोड एक्सीडेंट तो इतने होते रहते हैं रोज, बात मत पूछो। कई बार रास्ते चलते चलते हम चलते हैं और कार बस टक्कर लगा के चली जाती है, तो खड़े खड़े खत्म। मुझे याद है हम लोग पहले पहले ज्ञान में आए उन्हीं दिनों में 60s में, एक ब्रह्मा कुमार भाई 14 साल का था, रास्ते पर खड़ा था बस स्टैंड पर, और गाड़ी टक्कर लगा के उसी समय मार दिया। तो क्या है, ऐसे रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भी कोई मर जाते हैं और किसी की हड्डियां टूट जाती है, तो कितना नुकसान होता है और कितना दर्द होता है। एक्सीडेंट हुआ, जब तक ये फ्रैक्चर रिपेयर नहीं हुआ इतना दर्द होता है, बात मत पूछो। तो क्या है कि नई प्रवीणा बहन का दादी जानकी की प्रवीणा बहन का रोड एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में। उसकी गाड़ी जाती थी, दूसरी गाड़ी साइड से आकर टक्कर लगाकर चली गई, दोनों गाड़ी खत्म। और एक उसकी गाड़ी में भी तीन पैसेंजर, उन्हों को कुछ नहीं हुआ। प्रवीणा के ड्राइवर का भी कुछ नहीं हुआ। प्रवीणा बहन की हड्डी टूट गई। अभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फिर नीचे ट्रोमा में आए, कहा नहीं कुछ होता है। ऊपर आए, कहा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो एक दिन यहाँ रही, दूसरे दिन गई अहमदाबाद, तीसरे दिन ऑपरेशन हुआ। तब तक कितना दर्द, क्योंकि कहाँ एक्सीडेंट होता है, वहां से बड़ी हॉस्पिटल में कब तक पहुंचो। इंडिया में तो इतनी हॉस्पिटल है नहीं, तो कितना कर्म भोग भोग पड़ता है। तो ये है उस समय जितना अशरीरी रहने का, बाबा की याद का अभ्यास होगा तो काम आएगा, नहीं तो कई कंप्लेन करते हैं कि भाई दर्द है, कैसे बाबा की याद रहे। हमारे तो बाबा की याद रहती नहीं है। तो ये अभ्यास चाहिए। और फाइनल है नेचुरल कैलमिटीज, कुदरती आफताएं, क्योंकि आज ही समाचार सुना कि पिछले 120 घंटे में भारत के 9 शहरों में इतने तूफान हुए हैं। अभी भी राजस्थान में रेती का तूफान हुआ, उत्तराखंड में बादल फटे, तो इतनी बारिश हुई जो गाड़ियां सब कीचड़ में फंस गई। और कई आदमी मर गए। तो बिगर मौसम का बारिश हुआ, या कश्मीर में क्या इतनी ठंडी हो गई जैसे जनवरी की। अभी मई मास है और जनवरी जैसी ठंडी हो गई। तो क्या होता है कि कुदरत भी आजकल क्या है, कहाँ अनावर्षा है, कहाँ अति वर्षा है, कहाँ अति गर्मी है, कहाँ अति ठंडी है, और बिगर मौसम के। तो ये भी तो सबको सहन करना पड़ता है ना, जो जहाँ है सहन करना पड़ता है ना। तो करके बाबा के बच्चे हैं, उनको बाबा की मदद रहती है। जैसे वो सुनामी का तूफान आया था 2004 में दिसंबर मास में तूफान आया था, तो एक साथ 9 देशों में 6 घंटे में समुद्र ने तो अपनी मर्यादा तोड़ दी, कई मर गए। और कई मकान टूट गए। अभी हमारी एक माता थी श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका में उस छोटा आइलैंड है और समंदर किनारे पर कई शहर हैं। अभी वो माता रहती थी कैंडी में, जो कि पहाड़ी पर है, 3000 फीट, हमारी 4000 फीट की ऊंचाई है माउंट आबू की, वो कैंडी है 3000 फीट। वो माता गई थी ट्रिंको में, दूसरे शहर में, क्योंकि उसकी लड़की की शादी हुई थी। तो ट्रिंको है समुन्दर किनारे पर, तो जो पहाड़ी पर रहते हैं ना, वो समुन्दर किनारे घूमने जाते हैं। तो वो गए थे सारा 15-17 का काफला होटल में रहे समुंदर किनारे, और सवेरे 8 बजे तूफान आया, तो उस समय क्या है, कई शहर करने निकले थे समुंदर तट पर, तो वो लोग भी समुंदर तट पर थे। और ये माता 50-60 के बीच में थी, तो वो चार माताएं वहां खड़ी थी, पानी यहां तक आ गया था चारों के। तो एक माता ने उसको भीड़ा मदद के लिए, तो उसने कहा बाबा, तो उस माता ने छोड़ दिया। और जब पानी खत्म हुआ निकल गया, तो वो तीनों माता मर गई, ये माता बच गई। मतलब बाबा बच्चों को रक्षा करता है, याद करो बाबा को। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम कहो मेरा बाबा और मैं हाजिर होऊंगा। तो हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि जो बाबा की याद में है, बाबा की सेवा में है, उनकी बाबा रक्षा करता है। परंतु फिर भी नुकसान तो होता है, क्योंकि क्या है कि उसी समय सुनामी के समय ब्रायन भाई है ऑस्ट्रेलिया का, वो थाईलैंड में भी समुद्र किनारे वो लोग सब घूमने गए थे। तो उसका प्लान था ओरिजिनली कि वो भी पुकेट करके एक स्थान है, वहां सब डाइविंग करने जा रहे थे, क्योंकि गर्मी के दिन है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी और यूरोप में बहुत ठंडी, तो वो लोग सब व्यापारी लोग वहां घूमने गए थे। और 24 दिसंबर थी, क्रिसमस का दिन था, इवनिंग 24 शाम को। तो वैसे उसके मित्र वहां गए समुंदर तट पे डाइविंग के लिए, और ब्रायन भाई को अचानक उस समय बैंकॉक में कुछ पार्टी थी क्रिसमस की, वहां जाना पड़ा। तो वो तो बैंकॉक में आराम से बैठा, उसके जो भी मित्र संबंधी वहां डाइविंग करने गए वो आए ही नहीं, सब मर गए। तो क्या ऐसे ऐसे कई लोगों को बाबा बचा लेता है। कई स्थानों पर बाबा ने ऐसे भूकंप है, वॉल्केनो है, कई प्रकार के समझो एक्सीडेंट है, कुदरती तूफान है, उसमें बाबा ने भल बचाया है। परंतु समझो नुकसान कईयों को होना है। तो इसलिए जितना उस समय जिन्होंने बाबा को याद किया, तो क्या है बाबा भी मदद करता है। तो इसलिए ये अभ्यास अभी से करना है योग का, विशेष अमृत वेले। यहां भी यहां का अभ्यास फिर घर में काम में आएगा, तो इसलिए देखना है अमृत वेले एकदम बाबा के लव में लीन हो जाओ और बीज रूप स्थिति से बाबा से ज्ञान सुख शांति प्रेम की वर्षा लो। तो फिर क्या है यह अभ्यास, जब भी तकलीफ में है काम में आएंगे आप। और ट्रैफिक कंट्रोल का भी पूरा ध्यान रखना है कि ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करो। आप लोग यहाँ रोज रात को चार्ट लिखते हो ना, लिखते हो चार्ट? तो ये इसका भी अभ्यास रखना है चार्ट लिखने का। कम से कम चार्ट देखो या सारे दिन में हमने कितना योग में टाइम बिताया, कितना ज्ञान मंथन में टाइम बिताया, कौन से गुण धारण किए, कौन सी सेवा की, कितनों को सुख दिया। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो तन मन धन से कितनों को सुख दिया, मन वचन कर्म से किसी को दुख तो नहीं दिया, दोनों का हिसाब। पुण्य का खाता भी देखो, पाप का खाता भी देखो, और फिर सावधान रहना है। और हम लोगों ने जब भट्टी की थी 73 में, तो हम लोगों को कहा गया था सवेरे 4 से 8 बात नहीं करो किसी से, बात नहीं, कोई कारोबार नहीं, कर्मयोग भले करो पर मुरली पूरी होते तक किसी से बात नहीं करना। और बड़ी दीदी बहुत उसमें स्ट्रिक्ट थे, कोई भी उसके पास मुरली के पहले जाता था तो पूछती थी अर्जेंट काम है, अर्जेंट नहीं है मुरली के बाद आना। और मुझे याद है मैं एक बारी गई मुरली के पहले, मुझे भी कुछ कारोबार था, दीदी कहे शांत धीरे से बोलो, मैं अपने नॉर्मल आवाज में बोली, दीदी ने कहा नहीं धीरे से बोलो। तो क्या है कि कोशिश करनी है उस समय कुछ कारोबार नहीं करनी, बाबा की याद में रहना है। और वीक में एक बारी हो सके तो साइलेंस में रहना, उसका अभ्यास करना। क्या है कि कई बार कई सेंटरों में ये प्रैक्टिस शुरू की तो सेंटरों में 2-4 बहनों होती है, हर एक का अपना अपना दिन, उस दिन शांति में रहेंगी तो दूसरी है, क्योंकि सेंटर पर तो आना जाना फोन होता ही रहता है, तो दूसरी बहनें वो कारोबार करती है, ये बहन शांति में अपनी ड्यूटी बजाती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं यदि घर में संभव है, क्योंकि आप मेजोरिटी तो घरों में रहने वाले हैं। यहाँ भी कई है भाई बहने हैं विदेश से यहाँ आते हैं ना, साइलेंस का बैज लगाकर घूमते हैं, समझते हैं कि मधुबन में तो हम साइलेंस में रहें ताकि हमारी कमाई हो। तो जितना जितना हमारा शरीरी रहने का अभ्यास होगा तो उससे क्या होगा, कर्म भोग हमारा चुकतू होता जाए और हम उपराम रहेंगे। ये उपराम अवस्था में रहने की और साक्षी अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, याद दिलाना है मैं आत्मा हूं, ये शरीर भोग रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा मुरली में हमेशा क्या कहते हैं, मैं नहीं, कभी मैं नहीं किया ये, तो साक्षी कर बन के ये कहता था कि हाँ, ये गांव का छोरा था, ऐसे नहीं कहा मैं गांव का छोरा था। और हमेशा कहते हैं मुझे याद नहीं करो, इस शरीर को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने भी ये अभ्यास किया, तभी हम बच्चों को ऐसी अवस्था बनाने का शिक्षा दे सका। तो इसलिए हमें भी अभ्यास करना है, मैं नहीं, मेरा नहीं। अभी बड़ा लेसन बाबा ने ये कहा है, मेरे को तेरे में बदलो। जब मैं कहते हो तो ये याद रखो, मैं आत्मा हूँ। दूसरे को देखो, ये आत्मा है। क्योंकि शरीर को देखने की जो आदत है ना, उसको बदलनी है। घर वालों को भी अलौकिक दृष्टि से देखो, ये बाबा का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, मेरा पति नहीं, बाबा का बच्चा, मेरा अलौकिक भाई है। इतना बुद्धि में तो रखो, भले उसको भाई करके नहीं बुलाओ, पति को, बच्चे को भाई करके नहीं बुलाओ, नाम से बुलाओ बच्चों को, पर बुद्धि में ये रहे कि ये हमारे बाबा के बच्चे हैं, तो उसको उसी रीत से प्यार से चलाओ, बैलेंस रखो, प्यार का और लॉ का, लव और लॉ का बैलेंस रख के चलो घर में। तो जितना घर में आप बैलेंस रखकर चलेंगे तो क्या होगा, आपका संबंध अच्छा रहेगा, प्यार के कारण फिर बच्चे भी आपकी मानेंगे। पर सिर्फ प्यार नहीं करो, डिसिप्लिन में भी रखो कि इतना घंटा स्टडी करना है, इतना समय खेलना है, इतना समय टेलीविजन देखना है। कई लोगों ने तो अपने घर से टेलीविजन ही निकाल दिया कि बच्चों को फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़े, खुद भी नहीं देखते, बच्चों को भी नहीं देखना। और टेलीफोन, इंटरनेट सब पर फिक्स टाइम कि सारा दिन खेलते नहीं रहना है। तो इसी रीत से जितना बैलेंस रखेंगे, अलौकिक दृष्टि से चलेंगे, तो क्या होगा, बच्चे भी आगे चलकर आपके मानेंगे। नहीं तो क्या होता है, छोटे बच्चे है ना, तो जरा कंट्रोल में रहते हैं, और जैसे बड़े हुए सामना करेंगे। यहाँ भी ऐसे करते हैं ना, बच्चे सामना करते हैं ना, क्योंकि विदेश में तो 11, 12, 13 साल का बच्चा हुआ तो तड़फड़ करने लगता है, और कई बच्चे तो हमारे ज्ञान में चलने वाली ऑस्ट्रेलिया की एक माता थी, वो ज्ञान में अच्छी चलती थी, बच्चे भी थोड़े थोड़े समय तो चले, पर 15-16 साल की बच्ची हुई, घर छोड़ के भाग गई, रास्ते पर रहने लगी लड़की। वो रास्ते पर रहना पसंद करते हैं, माँ बाप की कंट्रोल में रहना नहीं पसंद करते। तो क्या है, जो प्यार से चलाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं और फिर समय पर चाहे बाबा के बनते हैं चाहे लौकिक जीवन में भी ठीक रास्ते पर जाते हैं। तो इसलिए हमको देखना है कि हमारा संबंध भी सबसे अच्छा रहे, क्योंकि ये हमारा अलौकिक जीवन है। तो इसलिए देखना है कि सिर्फ हम एक घंटा ज्ञान योग में है तो ठीक है, ऐसा नहीं, हमारा सारा समय कोई भी परिस्थिति है कैसे भी संबंध है हमारा मन खुश रहे। आज भी बाबा ने कहा ना, प्रसन्न चित्र हो। जब अंदर से संतुष्ट होंगे प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन फैलाएंगे, औरों को भी प्रसन्न करेंगे। तो ये देखना है कि हमें सुख शांति प्रसन्नता के वाइब्रेशन फैल हैं, वो ही हमारी मनसा सेवा। कि घर वाले भी कोई कंप्लेन ना करें, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। हम बहुत सौभाग्यशाली है जो बाबा मम्मा के अंग संग पले हुए, दादियों के संग रहे, हमारे दीदी जी का आज हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ, और दीदी जी ने हमें कर्म भोग पर अपने हिसाब किताब को योग बल से कैसे जीतना है और विशेष किन किन बातों का अटेंशन रखना है वो भी समझाया। दीदी जी के लिए मुख पर तेज है सूर्य जैसा, वाणी में है चंद्रमा सी निर्मलता, माया को बनाया है आपने अपना दास, ऐसे निर्मला दीदी जी आप है परमात्मा का दिव्य फरिश्ता खास। तो दीदी जी का विशेष आभार है, धन्यवाद है, दीदी जी हमारे बीच में आए और दीदी के एक एक बोल अभी हमें मम्मा बाबा की भाषणा करा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हम सचमुच मम्मा बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा के मम्मा के बोल सुन रहे हैं। दीदी जी थैंक्स। ओम शांति।
हाथ मत